तो प्रभुपाद जी ने 80 ग्रंथ लिखे, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि एक तो प्रभुपाद जी के गीता लिखने के पहले 600 गीता के ऊपर भाष्य यानी कमेंट्री अवेलेबल थे मार्केट में। और प्रभुपाद जी को पूछा गया, किसी ने पूछा कि कौन सा गीता मार्केट में खरीद सकते हैं, विदेश में पूछा, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि एक भी नहीं खरीद सकते आप। तो कारण ये था, इसमें कोई एरोगेंस या कोई गर्व नहीं था, क्योंकि कहने को दुख होता है कि जैसे हमारे आदरणीय और माननीय सम्माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भी एक गीता पर भाष्य लिखा है, गीता रहस्य, जब वो जेल में थे। हाँ, लेकिन जो कृष्ण को कहना है वो छोड़कर जो उनको कहना था उन्हें गीता के माध्यम से लिखा। और भी बहुत लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी ने भी गीता पर भाष्य किया है और क्या बताया कि गीता ये अहिंसा के लिए लिखी गई है। अहिंसा तत्व जो उनको बताना था वो उन्होंने गीता के भाष्य के रूप में प्रकट किया। अभी गीता में भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, है कि नहीं? हम क्या देखते हैं, अर्जुन बैठा हुआ है, बोलता है मेरा हाथ पांव जल रहा है, मेरा मन बहुत उदास हो गया है और मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता, मेरा धनुष हाथ से फिसल रहा है, मेरे को युद्ध नहीं करना है। और पूरा गीता बताया किस लिए, अरे मूर्ख उठ जा अभी तू युद्ध करने के लिए, और युद्ध करवाया उससे। धृतराष्ट्र वहां से बोल रहा है अच्छा हो गया बैठ गया, युद्ध की जरूरत ही नहीं है, युद्ध के बिना ही युद्ध जीत जाएंगे हम लोग, ये बैठ गया तो कितनी अच्छी बात है। अब आदमी बोलता है अरे ये कृष्ण क्यों उसको उकसा रहा है, अच्छा है ना वो बैठ गया तो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं उसके ऊपर, क्यों है, क्या मतलब बताते जा रहे हैं। और एंड क्या होता है, कृष्ण की बातें अर्जुन सुनते हैं और क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तो अहिंसा किधर आ गई उधर बताओ। लेकिन उन्होंने भगवद गीता के टिप्पणी के ऊपर लिखा है कि भगवद गीता ही अहिंसा का शास्त्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को जो भी कुछ बोलना है समाज को, तो गीता अच्छा किताब है। गीता में ना, गीता के माध्यम से आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि गीता कैसा ना जगन मान्य शास्त्र है। गीता के रूप में आप कुछ लिखोगे तो लोग उसको पढ़ेंगे, अरे गीता के ऊपर किताब है तो पढ़ेंगे, तो फिर उसका विचार सुनेंगे। इस प्रकार से वर्ल्ड में उस समय 600 भगवद गीता के किताबें थी और अलग अलग लोगों ने अपनी तरफ से अपने विचार गीता के माध्यम से प्रकट किए। मैं तो कहूँगा कि अपने विचार है तो अपना किताब लिखो ना, वो गीता को लेके बीच में क्यों लिखते हो? भगवान बोल रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते, तो उसका कुछ तात्पर्य अपना कुछ अलग ही लिख रहे हैं। भगवान ने क्या कहा और भगवान ने जो कहा उसके अलग ही कुछ लिख रहे हैं उस किताब में, तात्पर्य में। लेकिन गीता को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गीता वर्ल्ड फेमस बुक है, तो गीता का माध्यम पकड़ेंगे तो लोग पढ़ेंगे उसको। मैं लिखूंगा शायद नहीं लेंगे। आपको सुनकर बड़े आश्चर्य होगा, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश लोग हैं विश्व में, अमेरिका में, यूरोप में, जो गीता पर PhD कर चुके हैं, एक एक श्लोक जानते हैं, उसका संस्कृत अर्थ जानते हैं, पंडित है उसके अंदर, लेकिन उनको भगवान पर विश्वास नहीं है। और गीता पर दुनिया भर में प्रवचन करते हैं लेकिन गीता कहने वाले कृष्ण पर उनको बिल्कुल श्रद्धा नहीं है कि ये भगवान है। एक तत्व ज्ञान, एक फिलॉसफी, ये दृष्टि से उसको देखते हैं, और एक संस्कृत का, क्या कहते हैं उसको, संस्कृत का शास्त्र, उसके ऊपर वो पढ़ाई करते हैं संस्कृत के ऊपर, और अपनी टीका टिप्पणी उसके ऊपर देते हैं, लेकिन उनको कृष्ण पर श्रद्धा नहीं है। अभी आप बताओ, जिसको कृष्ण पर श्रद्धा नहीं है वो कृष्ण की भगवद गीता पर टिप्पणी करेंगे तो उसको पढ़कर आपको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। तो भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्या बोलते हैं इनमें, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जा। तो वो बोलेगा कौन है ये कृष्ण, उसके शरण में मैं क्यों जाऊँ, मेरे को फेत ही नहीं उसके ऊपर, ऐसा वो PhD आदमी बोलेगा ना। तो उसकी गीता का तात्पर्य सुन के आपके हृदय में क्या परिवर्तन पड़ेगा? अभी मेरा नाम विवेकानंद है, मुझे बचपन से स्वामी विवेकानंद से बहुत आकर्षण था, क्योंकि मेरा नाम उनका नाम सेम है। तो उन्होंने जाकर अमेरिका में एक भाषण दिया, भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो 1894 में आज भी दुनिया उसकी तारीफ करते कि उन्होंने ऐसा, लोग क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, उन्होंने क्या कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा करके सबका दिल जीत लिया। और वो उनका भाषण आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और वो विश्व प्रसिद्ध भाषण है उनका। लेकिन मेरा एक सुंदर सिंपल सा प्रश्न है, उनके साथ मेरा पूरा आदर है उनके लिए, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि वो भाषण सुन के कितने लोग कृष्ण के भक्त बने, वो इम्पोर्टेंट है। अभी मैं भाषण दूंगा और तालियां बजाएंगे आप, वाह वाह प्रभु जी क्या भाषण दिया आपने, लेकिन आपके जीवन में तसु भर भी फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरा भाषण व्यर्थ हो गया, इस यूजलेस। क्योंकि मैं आपको मनोरंजन करने के लिए, आपका क्या बोलते हैं अनुयायी बनाने के लिए, आपकी ताली स्वीकार करने के लिए भाषण नहीं दिया ना मैंने। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि एक भी गीता का अनुवाद जो मार्केट में अवेलेबल है 600, वो योग्य नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि लोग अपना ही टिमके बजा रहे हैं उसके अंदर, अपना ही ट्रम्पेट बजा रहे हैं, गीता का मैसेज तो बाजू में रहता है उसके अंदर। अभी सब लोग ऐसे वीडियो ऑफ हो गए ना, तो मैं किससे बात करूं। तो फिर प्रभुपाद जी ने अपने तरफ से गीता का अनुवाद किया, और जो गीता के भाषक, गीता के बोलने वाले वक्ता हैं भगवान कृष्ण, उनको क्या कहना है वैसा लिखा, वैसे अनुवाद किया, वैसे तात्पर्य लिखा। इसलिए नाम क्या दिया उसको, जशी आए तशी, भगवत गीता जशी आए तशी, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। तो अनुवाद करने वाले के लिए ये एक प्रामाणिकता होनी चाहिए कि समझो मैं अभी राजेश गरासिया के लिखे हुए किताब का गुजराती से इंग्लिश में अनुवाद कर रहा हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि राजेश गरासिया ने गुजराती में क्या लिखा है, किस भाव से लिखा है, उसी भाव को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। जिस भाव से लिखा गया है, जो संदेश देना है उनको, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सभी जितने भी विद्वान लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया है कि भगवद गीता के माध्यम से भगवद गीता का संदेश ही डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने, और अपने को जो भी बताना था लोगों के लिए वो बताया उन्होंने, उसका प्रचार किया। इसलिए हम आदर करते हैं कि उन्होंने जेल में लगकर ये गीता रहस्य लिखा, लेकिन गीता रहस्य में अपना बात बताया उसके अंदर, यथारूप नहीं बताया, एज इट इज नहीं बताया। मुझे क्या बोलना है, जैसे कि वो मराठी में हमारे इतिहास में कहानी है, या व्यक्तिला धरुन आना, तो क्या लिखा, धर सा मां कर दिया, या व्यक्तिला मारून आना, तो व्यक्ति को मारा गया, उसका मर्डर किया गया। तो मराठी में बहुत बड़ी फेमस कहानी है, धर सा मां केला, धरुन आना चाहे मारून आना। तो ऐसे वो चेंज हो गया ना उसका मीनिंग, क्या कहा था उन्होंने, इसको पकड़ के लेके आओ अरेस्ट करके, तो क्या किया गया, उसको मार दिया गया, क्योंकि जो कहने वाले का जो उद्देश्य था उसको चेंज किया गया और अपना विचार डाल दिया कि इसको मारा जाए, तो उसको मारून टका, ऐसा करके मार दिया। इसी प्रकार से भगवद गीता के अनुवाद। इसलिए प्रभुपाद जी का गीता इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रभुपाद जी की गीता पढ़कर लाखों लाखों लोग भक्त बने, क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा है, कृष्ण ने जो गीता कही है उसका क्या उद्देश्य है। देखो भगवद गीता शुरू हुई तभी अर्जुन रथ के ऊपर बैठा हुआ है, सारथी कृष्ण बने हुए हैं, दो सेना दो तरफ खड़ी हैं, और बीच में अर्जुन बोलता है भगवान मुझे जरा लाके दिखाओ कौन कौन लड़ने के लिए खड़ तैयार हो गए हैं। जब जाता है बीच में तो कहता है मुझे युद्ध नहीं करना है, मैंने बताया आपको अभी ना, मुझे युद्ध नहीं करना है, ये सब रिलेटिव्स है, वो सब तो मैं कैसे मारूं उनको, इसमें तो पितामह भी है, गुरु भी है, इसमें द्रोणाचार्य भी है, उसमें शकुनी मामा भी है, बहुत सारे इधर भी रिलेटिव है उधर भी रिलेटिव है, तो इन सब को मार के मुझे राजा बनने का कोई इच्छा नहीं है, मैं जंगल में जाके भिखारी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, भिक्षा मांगूंगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना है। इतना बोलते 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 5-6 रीज़न दिए उन्होंने कि कैसा युद्ध करना सही नहीं है, और करते 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 क्या हो गया, हाथ पांव गर्म हो गए, कांपने लगे, अग्नि लगी, धनुष गिरने लगा, बोलते हैं भास बैठ गया मैं, अभी मैं आगे युद्ध नहीं कर सकता, मेरे से दिमाग मेरा खराब हो गया है, भ्रमित हो गया है, हाथ पांव कांप रहे हैं और धनुष फिसल रहा है, और वो एक श्लोक है कि वो रथ पर बैठ गया धनुष और बाण छोड़कर, तो क्या हुआ? एक एक अध्याय पूरा उसी ने बोला जो बोलना था उसको, बहुत सारा बोल रहे अर्जुन। जब तक अर्जुन बोल रहे थे तब तक कृष्ण कुछ नहीं बोले, भाई तेरे बकेट में जितना सामान है वो खाली कर दे एक बार, फिर मैं बोलूँगा आगे की बात। क्योंकि जब तक तेरे बकेट में सामान है तब तक मैं डालूँगा कैसे उसके अंदर? जब तेरा बकेट खाली होगा तो मेरे डालने के लिए योग्य स्थिति उत्पन्न होगी ना, तो बोल तू बोल। तो जब उसका बकेट रिकामा हो गया ना, रीता हो गया, फिर आप देखते हैं सेकेंड चैप्टर में दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलना आरंभ करते हैं, और फिर भगवान दूसरे अध्याय से लेकर 18वां अध्याय तक बोलते हैं, और बीच में बहुत सारी क्वेश्चन उत्तर आंसर भी होते हैं। अभी ये सुनिए ध्यान से, 18 चैप्टर के बाद में क्या हुआ, अर्जुन ने क्या बोला? नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव। अभी मैं ना आप जो बोलेंगे वैसा करूँगा, आपको क्या कहना है, युद्ध करना है ना, मैं युद्ध करूँगा, और जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा मैं। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद में अगर पढ़ने वाले को, मतलब आपको, अगर एंड में ऐसा लगे कि भगवान जो आप कहेंगे मैं करूँगा, अब इसके आगे का जीवन है ना जैसा आपका आदेश है वैसे चलेगा, ऐसा अगर आपका निर्णय होता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको गीता सही समझ में आई। उसका प्रूफ क्या है, उसका टेस्ट क्या है बताओ, कि आपको गीता समझ में आई? जैसे कृष्ण ने कही और अर्जुन ने सुनी और अर्जुन पर उसका क्या परिणाम हुआ, वो अगर आप पर हुआ मतलब आपको समझ में आया जो कृष्ण को कहना था। अगर आपके मन में अहिंसा का विचार आया तो आपको महात्मा गांधी का विचार समझा, और किसका विचार समझा नहीं, महात्मा गांधी का समझ में आया लेकिन कृष्ण का समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? अरे अर्जुन का ये जो मन परिवर्तन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वैसा मन परिवर्तन अगर आपका होता है तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कृष्ण का मैसेज समझ में आया, ये आपको आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया। तो वही गीता सही है, या वही गीता का अनुवाद सही है, और तात्पर्य वही सही है जो पढ़ने के बाद में आपको भी ऐसा लगे कि हे कृष्ण मैं अभी आपका भक्त बनूंगा और जैसा आपका आदेश है वैसा पालन करूंगा। सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई लॉजिक, कोई प्रश्न है आपका इसमें, कोई तर्क है आपका इसमें, कोई मुश्किल है? जो ऑथर है उसका, जो वक्ता है, उसने क्या मैसेज दिया है, और उसका जो श्रोता था पहला वाला उसके अंदर क्या परिणाम हुआ है? वो परिणाम अगर आप में होता है तो आपको गीता समझ में आई, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखो अर्जुन ने खाली गीता के एंड में नहीं कहा है, उसके बाद में भगवान ने बोला ए ये कर्ण को मार दे अभी तू, उसका रथ जमीन पे अटका हुआ है, वो निशस्त्र है जमीन पर खड़ा है, फिर भी अभी तू उसको मार दे। तो अर्जुन ने वाद विवाद किया थोड़ा बहुत शास्त्र के अनुसार, लेकिन एंड में क्या किया, बाण मारा ना उसको, मतलब क्या, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। डिस्कस कर सकते हैं आप, प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एंड में करना वही है जो भगवान की इच्छा है। तो अर्जुन ने भीष्म के लिए भी प्रश्न किया था, अरे बाप रे इनको कैसे मैं जाके पूछूं कैसा मरना है आपको? भगवान ने बोला जाओ उनको पूछो उनको मारना कैसे है, वो कैसे मरेंगे? नहीं 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 कैसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं तो बैठो और खुद मरो और अधर्म का राज्य होगा, दुर्योधन राजा बनेगा। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मन को सवारा और किया क्या, जो भगवान ने कहा वही किया, गए उधर और भीष्मदेव को पूछा। इस तरह से महाभारत के पूरे युद्ध में भगवत गीता सुनने के बाद में कई प्रसंग ऐसे आए जो अर्जुन को पटे नहीं, कि नहीं 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 मैं नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं पटने पर भी अर्जुन ने भगवान का आदेश पालन किया। इसका मतलब क्या, खाली डायलॉग नहीं मारा था, करिष्ये वचनम तव किया उन्होंने, मन को नहीं जचा फिर भी भगवान का आदेश पालन किया। अगर ऐसी आपकी और हमारी अवस्था होती है तो हम और आप समझ सकते हैं कि हमें गीता समझ में आई। तो वो गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी अनुवाद के साथ तात्पर्य के साथ, उसको देखकर आपके सामने एक बैठा व्यक्ति बैठा है जो भक्त बना है, कम से कम इतना तो प्रूफ है कि विश्वरूप दास वो गीता पढ़ के भक्त बना। बाकी लोगों का वो लोगों को मालूम, लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मेरे पास विवेकानंद जी की गीता भी थी मैंने महात्मा गांधी का भी गीता देखा है, लोकमान्य तिलक का भी देखा हुआ है और विनोबा भावे की गीता भी देखी हुई है जो उन्होंने मौन में लिखी थी। ऐसे भारत में बहुत सारी गीता है, लेकिन वो सारी गीताएं पढ़ के मुझे कॉलेज में कभी लगा नहीं कि भक्त बनूं। जब प्रभुपाद जी की गीता पढ़ी ना तो बहुत आसानी से समझ में आई, नंबर वन। बाकी सब चीज़ में इतना कॉम्प्लिकेशन था ना, ऐसा घुमा घुमा के क्या कहना चाहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। सबसे पहले विवेकानंद की पढ़ी मैंने, क्योंकि विवेकानंद जी मेरा नाम सेम था ना, तो एक नेचुरल आकर्षण था। सबसे पहले उनकी किताबें लेके आया मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आया। कई बार पढ़ा, एकदम क्लिष्ट लैंग्वेज था उसके अंदर, लेकिन प्रभुपाद जी का लैंग्वेज इतना सिंपल था, और सिंपल समझने के लिए था और पालन करने के लिए भी सिंपल था। सार उन्होंने बता दिया, इसलिए इनका लिखा हुआ गीता इम्पोर्टेंट है। इसलिए नहीं कि वो मेरे गुरु जी के गुरु जी है, मेरे इस्कॉन के संस्थापक है, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो। मैं पहले इस्कॉन में नहीं था, पहले इस्कॉन के बाहर था। जब बाहर था तब गीता पढ़ा मैंने, तब मैं अंदर आके भक्त बना, नंबर वन। ये बात आपको समझ में आई ना कि बोनाफाइड मतलब योग्य, योग्य वचन योग्य भाव से अपना कोई विचार न डालते हुए कृष्ण का विचार यथारूप प्रकट किया उन्होंने, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण इम्पोर्टेंट यह है उसका कि भगवद गीता और बाकी सारे किताबें, यानी प्रभुपाद जी ने क्या क्या लिखा, श्रीमद् भागवत लिखा, 18 खंड में आज अवेलेबल है वो। इस मैराथन में जो मैराथन का डिस्काउंटेड रेट है उससे भी 700-800 रुपये कम रेट में भक्ति वेदांत के स्टॉल में ये भागवतम सेट मिल रहा है। एक होता है कॉस्ट साल भर का, मैराथन में वो कम करके मिलता है इस्कॉन की तरफ से, इस्कॉन मैराथन रेट, और उसके ऊपर हमारा एक आदमी है जो स्पॉन्सर करता है और वो भक्ति वेदांत के काउंटर में आपको उससे भी 700-800 रुपये में कम में मिलता है। तो ये भागवतम है 18 खंड का। फिर चैतन्य चरितामृत जो प्रभुपाद जी ने 17 खंड में उसका अनुवाद किया था, जो आज 9 खंड में अवेलेबल है, वो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। फिर प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु ये किताब अनुवाद किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन के नाम से, फिर सभी भाषा में हुआ बाद में। फिर उन्हें उपदेशामृत लिखा, फिर उन्हें कई छोटी मोटी किताब लिखी, ऑन द वे टू कृष्णा, द पाथ ऑफ परफेक्शन, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, ऐसे बहुत, आर्ट ऑफ चैंट एंड बी हैप्पी, रीइंकार्नेशन, ऐसे बहुत सारे किताब लिखे, टोटल 80 किताब लिखे। लेकिन मेन क्या है, 9 खंड का चैतन्य चरितामृत, 18 खंड का श्रीमद् भागवत, 1 खंड श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति रसामृत, मतलब क्या ना, पूरे वेदा के शास्त्रों का जो क्रीम है ना, क्रीम, वो सब आपको दिया उन्होंने। ईशोपनिषद दिया उन्होंने आपको, 108 उपनिषद में सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद है ईश उपनिषद। उन्होंने कहा था कि भक्तों को वो पढ़ना चाहिए, बाकी नहीं पढ़ पाए वो ठीक है, लेकिन उपनिषद में ईश उपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए। अभी अपना ना दिल ऐसा पिघलता है, जब बताने के समय भी दिल पिघलता है, क्यों? एक तो 80 साल की उम्र, एक तो इतनी बूढ़ी उम्र में अमेरिका गए, बर्फीली ठंडी वहाँ पर, उसकी आदत नहीं है, कोई सहारा नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई मठ नहीं है, कोई प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, इसमें से भिक्षा मांग के पहले भक्त बनवाए, और फिर एक सेंटर खोला, फिर दूसरा मंदिर खोला, फिर सैन फ्रांसिस्को में एक मंदिर खोला, फिर एक इंग्लैंड में खोला, फिर एक ऐसे करते करते सब जगह मंदिर खोलते गए, 6-6 महीने में नया मंदिर खोलते थे, 6-6 मंदिर महीने में। 12 साल के टाइम पीरियड में 69 साल, यानी 69 से लेकर 81, 12 साल हो गए ना, 12 साल के पीरियड में 14 बार विश्व का भ्रमण किया, पूरे विश्व का, गोल पूरे, 108 मंदिर स्थापन किए। तो उसका सिस्टम भी करना पड़ता है ना, डीटी लानी पड़ती है, डीटी वर्शिप सेटअप करना पड़ता है, और क्या क्या भक्तों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, प्रसाद की व्यवस्था है, डोनेशन आना चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कितना चीज़ है। आपने अभी एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का एक ब्रांच खोला नया ना, तो कितना काम होता है उसके अंदर, स्टाफ को लाना, सिस्टम सेटअप करना, पॉलिसी पेमेंट, कितना चीज़ है उसके अंदर। एक मंदिर स्थापन करना कितनी डिफिकल्ट बात है, तो ये सब करने में पूरा दिन उनका खर्च होता था, वो तो ट्रैवलिंग भी करना है, फ्लाइट से इधर उधर जाना है। अभी किताब लिखने को टाइम कितने बताओ, 4:30 को मंगला में आना है, अगर बॉस नहीं आएगा तो डिसाइपल कैसे आएंगे, तो बॉस को भी खड़ा रहना है मंगला आरती में 4:30 बजे, फिर जपा भी करना है सबके साथ, फिर दर्शन आरती भी करनी है, भागवतम प्रवचन खुद को करना है, जहाँ भी रहेंगे वहाँ खुद प्रवचन करना है। इसका मतलब प्रभुपाद जी रोज कहीं ना कहीं भागवतम प्रवचन देते थे, रोज जिस मंदिर में है वहाँ भागवतम प्रवचन कौन देगा, प्रभुपाद जी देंगे। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी मंदिर में आए हैं रूम में सो रहे हैं और कोई प्रवचन दे रहा है, प्रभुपाद जी मंदिर होते हुए ऐसा नहीं होता था ना। तो कहने का मतलब क्या है, फिर खत लिखना है, उसका जवाब लिखना है, तभी कंप्यूटर नहीं थे ईमेल भेजने के लिए, हाथ से खत लिख के भेजना पड़ता था पोस्टल एड्रेस डाल के स्टैम्प लगा के, फिर वो टाइम है, फिर मसाज लेना है, फिर प्रवचन देना है, गेस्ट लोगों को मिलना है, फिर संध्या आरती है, ऐसे करते करते समय ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, अब एक ही समय बचा है, वो है नींद का समय। नींद त्याग देंगे तो शांति मिलेगी, एक तो नंबर वन भीड़ भाड़ नहीं होगी, बिजी नहीं होंगे, सब सोते रहेंगे, मैं फ्री रहूँगा, तो उन्होंने सोचा कि ये अच्छा टाइम है। तो उन्होंने क्या किया, रात को 11 बजे वो उठने लगे, हम लोग जब भी नींद की तैयारी करते ना सोने की, तभी वो 8:30 बजे सो के 11 बजे उठते थे, 10 बजे कभी उठते कभी 11 बजे उठते थे, 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लिखते थे, और 4 को जाकर बाथरूम में स्नान करते थे और 4:30 को मंगला आरती में आते थे। और भाई और बहनों प्लीज़ याद रखना, ये केवल इंडिया में तभी नहीं किया, जिधर भी जाते थे, अभी इंग्लैंड में है उधर भी वही शेड्यूल है उनका, वही शेड्यूल है, कोई जेट लैग विट लैग कुछ है नहीं, रात को बैठकर किताब लिखना है। और कई किताब मैराथन में लिखी उन्होंने कि समय ही नहीं है, जल्दी करो, आपका प्रिंटिंग का स्पीड मेरे लिखने के स्पीड से कम है, ऐसे कहते थे वो, पता है आपको, अभी मैं लिखना बंद कर दूंगा क्योंकि आप लोगों का स्पीड बहुत कम है, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आप स्लो प्रिंट करते हो उसको। तो एक बार क्या हो गया, उन्होंने चैतन्य चरितामृत ना वो उन्होंने लिख के पूरा किया और बोला, वो टीम को बुलाया, आ जाओ, कितना टाइम लगेगा, बोलते एक महीने में एक किताब प्रकट होगी आपकी और पूरा आने के लिए 17 महीना लगेगा। हेलो व्हाट नॉनसेंस, 17 महीना में रुक कर रहूँगा आपके किताब के लिए, लिख के पूरा होकर 17 महीने के बाद निकालोगे आप। प्रभुपाद ने बोला मुझे एक महीने में सारी 17 किताबें प्रिंट होकर चाहिए, तब तक मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ। अभी गुरु की आज्ञा होगी, अभी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ गुरु, व्हाट टू डू। तो वो रामेश्वर प्रभु और उनकी टीम ने उस समय एक महीने में 17 खंड चैतन्य चरितामृत फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित किए। इस तरह से भी उनकी किताबें छपी गई है, ऐसा दबाव डाल के पूरा प्रेशर के साथ टारगेट के साथ उन्होंने लिखा है, क्योंकि समय कम था ना भैया, उनको मालूम था कि कभी भी जिंदगी समाप्त हो सकती है। लेकिन भागवत पूरा नहीं हुआ उनका, दशम स्कंद का 14वां अध्याय तक ही उन्होंने अनुवाद किया और दशम स्कंद में 89 चैप्टर्स हैं, उसके बाद 11th और 12th कैंटो भी है, वो नहीं कर पाए, उनको शिष्य ने किया, इतना स्पीड मारने के बाद भी वो नहीं कर सके, लेकिन चैतन्य चरितामृत पूरा किया भागवत के पहले। और भागवत लिखने के पहले दशम स्कंद को 3 खंड में प्रकाशित कर दिया, बोला पता नहीं मैं भागवत के खत्म होने के पहले तक जिंदा रहूं नहीं रहूं, तो दशम स्कंद को रिस्क लेकर कथा रूप में प्रकट कर दिया उन्होंने। वैसे कृष्ण कथा पहले पहले बताना नहीं चाहिए किसी को, वो तो बहुत गहन विषय है, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और दशम स्कंद को 89 अध्याय में स्टोरी रूप में गीत कथा रूप में उसको प्रकट कर दिया पहले ही, फिर श्लोक बाय श्लोक उसका अनुवाद लिखना आरंभ किया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राधारमण प्रभु, राजेश गरासिया, प्रमोद सावंत, सब लोग आप भगवान के भक्त हो, आपके पास आज प्रभुपाद की जो भी किताबें हैं वो नींद त्याग करके लिखी हुई किताबें हैं, ध्यान रखना इस बात को, प्लीज
नहीं नहीं हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं।
नहीं 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 आप समझे नहीं यार, तुम सुनते नहीं बराबर से। प्रभुपाद की जो भी किताबें आपके पास है, प्रभुपाद जी ने नींद त्याग करके लिखी हुई ये किताबें आपके पास है, ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको। आप सो रहे ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं इसका मतलब आप सुन नहीं रहे बराबर से मैं क्या बोल रहा हूं। आपके पास जो भी किताब के रूप में धन प्रभुपाद की किताब का है, वो प्रभुपाद जी का निद्रा त्याग करके लिखी हुई किताबें हैं। हम लोग ना सब कुछ त्याग कर सकते हैं, नींद त्याग नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। एक दिन नहीं सोएगा ना तो दिमाग खराब रहता है, चिड़ चिड़ करते रहते हैं, आंखें लाल रहती है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, दिमाग गर्म रहता है हमारा। एक दिन नींद नहीं हुआ तो प्रभुपाद जी ने 12 साल नींद को त्याग करके इन किताबों को लिखा है, अपने हृदय को अर्पण किया है। राधा दामोदर मंदिर में जब किताब लिखते थे ना प्रभुपाद जी, तो राधा दामोदर जी के गोस्वामी उनको महाप्रसाद का लंच प्लेट लाके रखते थे उनके दरवाजे के बाहर, और प्रभुपाद जी सीधे रात को 8 बजे अपना दरवाजा खोलते थे और देखते थे कि उनके दरवाजे पर राधा दामोदर का लंच महाप्रसाद प्लेट पड़ा हुआ है। फिर वो जाकर रूप गोस्वामी की समाधि के सामने का जमीन झाड़ू से साफ करते थे आंखों में आंसू लेकर, और उसके बाद में वो दोपहर का लंच रात को खाते थे। उनको होश ही रहता नहीं था, इतना मग्न होकर उन्होंने वो ग्रंथ लिखे। वो तो इस्कॉन स्थापन करने के पहली बात है, उनको पास बहुत टाइम था, दिन भर किताबें लिखते थे, लेकिन इस्कॉन स्थापन करने के बाद में उनको 9 स्कंद उनको और लिखना था, तो रात में जाकर उन्होंने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो सेकेंड कैंटो है, तो थर्ड कैंटो है, तो फोर्थ कैंटो है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ जितने भी कैंटोज भागवतम के हैं ना आपके, वो सारे बीच रात में लिखे गए हैं। दिन भर अपनी सेवा करके, प्रचार करके, लोगों को अपनी कृपा देके, मंदिरों को स्थापना करके, जब दुनिया सोती थी, अच्छे ढेर होते थे लोग सो खाना पीना खाके, तभी प्रभुपाद जी जग कर रात भर लिखते थे। और रात भर लिखते थे तो कुत्ते भौंकते थे तो उनको डिस्टर्ब होता था, तो एक चोर जो है ना वो भक्त बना, तो वो चोर बोलता है मेरे को रात को नींद नहीं आती है, मेरे को रात को जग के रहकर चोरी करने की आदत लग गई है, अब रात को नींद नहीं आती है, तो मुझे कुछ सेवा दो, रात को मेरे को अभी चोरी का काम तो करता नहीं हूँ और जगे रहता हूँ तो मुझे बोर होता है। तो प्रभुपाद ने कहा झू में रात को जो कुत्ते भौंकते ना उनको शांत रखा करो आप, क्योंकि मुझे किताब लिखने में डिस्टर्ब होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, रात भर उनके रूम में लाइट चालू होके वो किताब का अनुवाद करते थे। तो पता है आपको क्या मिला है, हम लोगों को क्या मिला है, ये इतना त्याग करके लिखे हुए परमोच्च शास्त्र का अनुवाद हमको मिला है। ये उनकी करुणा का हमारे लिए दिया हुआ गिफ्ट है, उनकी करुणा जो है ना हमारे प्रति, वो हमने हमारे लिए उन्होंने कैसे प्रकट की किताबों के माध्यम से, ये दूसरी बात है। पहली बात क्या थी, यथारूप लिखा उन्होंने, अपना कुछ लिखा नहीं। दूसरा क्या लिखा, नींद त्याग करके, अपना चैन त्याग करके उन्होंने हमको उसका अनुवाद दिया। तीसरा इम्पोर्टेंट क्या था, उनको पता था कि मैं नहीं रहूँगा लेकिन मेरी किताबें रहेंगी, और मैंने जो मेरे होते हुए परिवर्तन कराया वो मेरी किताबें मेरे बाद में परिवर्तन कराएंगी, ये उनको पता था। यानी मेरी किताबों के माध्यम से मैं जीवित रहूँगा, मैं शरीर से तो मर जाऊँगा एक दिन, लेकिन किताबों के माध्यम से चिरंतन काल तक जीवित रहूँगा जब तक मेरी किताबें रहेंगी। इसलिए उनको जल्दी थी कि जीवित काल में जितना हो सके उतना पूरा होना चाहिए, ये तीसरी बात हुई। हाँ, उनको पता था कि मेरी जो शिक्षाएं हैं, जो मेरा लोगों को कहना है, वो सब मेरे किताब के माध्यम से जीवित रहेगा मैं जाने के बाद भी। और सच है कि नहीं, आज भी उनकी गीता पढ़ के लोग भक्त बन रहे हैं ना, प्रभुपाद जी तो नहीं रहे अभी आज, लेकिन उनकी गीता पढ़ किताब पढ़ के अभी भी लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको समझ में आएगा ना, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तब आपकी किताब पढ़ने का भाव डिफरेंट होगा, सुधारित भाव होगा आपका उनकी किताब। ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी कीमत है हमारे लिए, अमूल्य भेंट प्रभुपाद जी ने हमको दे दी। और एक बात सुनाता हूँ आपको मैं, कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैंने जो अनुवाद और तात्पर्य लिखे हैं वो मेरे भक्ति के अनुभव किए हुए आनंद का प्रतीक है। ये मेरे लिए कष्ट नहीं था, ये तात्पर्य लिखना मेरे लिए अति 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 आनंद का अनुभव था। इसलिए मैं भूख प्यास और नींद को खोकर भी मुझे कष्ट नहीं हुआ, आनंद ही प्राप्त हुआ। ये मत समझना कि नींद त्याग दिया तो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते अनुवाद किया उन्होंने, नहीं, ये उनका आनंद का काल था जब वो लिखते थे, बड़ा दिव्य आनंद का उन्होंने अनुभव किया। तो ये किताब यानी प्रभुपाद जी के दिव्य आनंद का भी अनुभव है, ये जो दिव्य आनंद का भी अनुभव आपको मिलेगा। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं ये प्रभुपाद जी के हृदय का जो दिव्य आनंद है उसका प्रकटीकरण किताब के रूप में आपके लिए अवेलेबल है। प्रभुपाद जी को दिव्य आनंद कैसे हुआ अगर आपको पता करना है तो उनकी किताबें आप पढ़िए, क्योंकि दिव्य आनंद में उन्होंने वो अनुवाद और तात्पर्य लिखे हुए हैं। प्रभुपाद जी का दिव्य आनंद का संग आपको उनके जाने के बाद भी आज उनके किताबों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी। भक्ति वेदांत में आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपने वास्तविक रूप में प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर अपने जीवन को परावर्तित कर दिया है, परिवर्तन हो गया है, तो आपको देखना यह है कि आपके साथ जितने लोग काम करते हैं वो सब लोगों को आपको वो गीता देना है। आपने दिया है क्या, आपको लगता है क्या भक्ति वेदांत में जितने लोग काम कर रहे हैं सबके पास गीता है और सबने गीता पढ़ा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अपने काम में देखना है कि आपके कितने लोगों के पास गीता नहीं है, या तो उनको आप फ्री में गिफ्ट करो, या तो उनको डिस्काउंटेड रेट में दो, या तो उनको बेचो, जैसे भी आपको लगे। लेकिन पॉइंट यह है कि केवल गीता बेचकर उसको घर पे शोकेस में रखना नहीं है, उनको पढ़ने के लिए आपको इंस्पायर करना है, प्रेरणा देनी है। इतना तो हम कर सकते हैं, आपको रोड पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्डिंग के अंदर ही इतने लोग हैं गीता के बिना बैठे हुए हैं। तो इधर ही आप दिसंबर के मैराथन में आप ये भगवद गीता लोगों को देकर उनको पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। और ये दिसंबर के मार्गशीर्ष महीने में भगवान ने गीता बताई थी, तो इस महीने में आप उनको गीता पढ़ भी सकते हैं साथ में बैठकर। फार्मेसी में है, मेंटेनेंस में है, बिलिंग में है, आप एक एक दिन में एक श्लोक पढ़ सकते हैं भगवद गीता का तात्पर्य के साथ, थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अगर रोज़ मुमकिन नहीं तो हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, यानी महीने में चार बार हो जाएगा। और 25 दिसंबर को जरूर कीजिए, उस दिन तो गीता भगवान ने कही थी, उस दिन जरूर कीजिए। उस दिन शुक्रवार का दिन है, आज भी शुक्रवार का दिन है, शायद आज शनिवार है, 18 को शुक्रवार है, 25 को शुक्रवार है, और 31, और अभी मार्गशीर्ष महीना चलेगा अभी, और चलेगा मार्गशीर्ष महीना, तो ये महीने में आप कर सकते हो। कैसा है ना, कभी कभी बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तु और भाग्य हमारे लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन पता नहीं होने के कारण हम उसको इतना ज़्यादा मूल्य देते नहीं हैं, इतना महत्व देते नहीं हैं। क्योंकि क्या है ना, अभी समझो किसी बच्चे को आपने कोहिनूर हीरा दिया इतना बड़ा, और बताए नहीं वो क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, उसके साथ गेंद गेंद खेलेगा, गेंद समझ के उसके साथ खेलेगा, बैट बॉल खेलेगा उसके साथ। किसी अनपढ़ औरत को दिया तो वो कपड़ा धोने के लिए उसका यूज़ करेगी ब्रश की तरह, अच्छा है, रफ भी है थोड़ा सा, कपड़ा मैं साफ कर सकती हूँ उससे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे लोगों की बुद्धि होती है वैसे वो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन है तो वो कोहिनूर हीरा ना, और जिसको उसका ज्ञान हो गया है कि ये कोहिनूर हीरा है, तो वो घर के सबके अंदर के अंदर के अंदर के कपड़े में उसको लॉक करके रखेगा, संभाल के एकदम बड़े बॉक्स में। उसका मूल्य जिसको पता है वो उसको वैसा ट्रीटमेंट देगा। तो आपके लगेगा हर ये क्या नाम हॉस्पिटल का, भक्ति वेदांत है, इनका ही किताब है, तो क्या है, ठीक है ना, अभी क्या बड़ी बात क्या है उसके अंदर। लेकिन कैसी लिखी वो और बाकी की किताब कैसे लिखे, और क्या तपस्या किया उसके पीछे, क्या भाव का प्रकट किया उसके पीछे, ये जब पता चलेगा ना तो आप हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि किसके लिए किया उन्होंने, हमारे लिए किया, हमको समझ में आए, इसलिए उसका 80 भाषा में अनुवाद किया। देखो भगवत गीता का 80 भाषा में अनुवाद किया ताकि मराठी के लोगों को भी समझे, कन्नड़ को भी समझे, पंजाबी को भी समझे और गुजराती को भी समझे, सबको समझ में आ जाए, ऐसा ये संदेश भगवान का सब तक पहुंचे, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ना सबको ऐसा हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। देखो कितने लोग बैठे यहाँ पर, स्नेहल मयकर है, उर्मिला नाबर है, और अमित मोरे है, श्रीराम खंडारे, गजानन रामटेकी, सबको विनती करता हूँ, क्या आपने भगवत गीता पूरी पढ़ी है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, खाली प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको मालूम है आपका मन में उत्तर क्या है उसका। तो सबसे पहले हमको गीता पढ़नी चाहिए।
यस प्रभु जी।
और जिन्होंने,
मैं प्रयास कर रहा हूं कि रोज एक श्लोक पढ़ता हूं।
बहुत अच्छा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ी है बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उतना अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और अगर नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ो, और हम पढ़ने के बाद में जिनके साथ हम काम करते हैं उनको भी प्रवृत्त करो, प्लीज आप भी पढ़ो, क्योंकि मनुष्य होने के बाद में अगर आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी तो भगवान ने दिया हुआ मनुष्य का जन्म जो है वो व्यर्थ हो जाता है, इट्स अ यूजलेस वेस्ट, क्योंकि भगवद गीता जो पढ़ना है ये केवल मनुष्य के जन्म ही मुमकिन है। अगर हम कुत्ता बिल्ली बनेंगे, पंछी बनेंगे, तो उसमें भगवद गीता समझना मुमकिन नहीं है। तो कृपा करके इसको पढ़िए, इस जन्म में नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? इसी जन्म में हमको ये दिव्य मौका मिला है, इसलिए हम आपको विनती करते हैं, इस जन्म का लाभ लीजिए। ये गीता जैसे शास्त्रों को समझने के लिए दिया गया जन्म है, आपको नम्र विनती है। और ये शास्त्र जब हम दूसरों को समझाते हैं तो भगवान ने क्या कहा है, 18 अध्याय में 68वां श्लोक है, भगवान क्या कहते हैं, जो ये शास्त्र किसी और को समझाएगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, और उससे अधिक और कोई प्रिय नहीं होगा, ये उसके अगले वाले श्लोक में कहा है। पहले वाले में क्या कहा है, जो बताएगा मेरे इस भगवद गीता के श्लोकों को, दूसरों को समझाएगा, वो मेरे लिए बहुत प्रिय होगा, नंबर वन। नंबर टू, उसके ज्यादा प्रिय और कोई नहीं होगा जो मेरे भगवद गीता का सार लोगों को समझाएगा। इसलिए भगवान को प्रिय बनने का और भी एक आसान तरीका है ना, भगवद गीता सुनाने का और सुनने का। तो हम लोग सब लोग भगवान को प्रिय हो सकते हैं। और श्रीमद् भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, ये सब अमृत है, जिसने आस्वादन किया उनको पता है इसमें कितना आनंद है। इस सागर में जिसने छलांग लगाई है उसको क्या अनुभव आता है, वो वर्ड में क्या कहते हैं उसको, शब्द में उसका वर्णन नहीं कर सकता है। भाई मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है भागवत पे सुनकर और समझकर और बोलने में जो आनंद है ना, वो मैं कैसे बताऊं आपको, क्या हो रहा है मुझे कैसे बताऊं। वो जब हिमालय में पैदा हुए आंवला से और हिमालय के जड़ी बूटी से बना हुआ और हिमालय के गाय से, गाय के दूध से बना हुए घी से बना हुआ जो च्यवनप्राश है, वो मुझे एक स्वामी जी बनाते हैं, वो मुझे भेजते हैं और वो मैं खाता हूँ साल भर। अभी उसमें क्या स्वाद है मैं कैसा वर्णन करूँ आपको, बताऊँ क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं बता सकता मैं। वो वाड़ा में जो गौशाला है हमारी, जो उसमें देसी गाय है, गिर गाय, उस गिर गाय के दूध से बनी हुई जो मिठाई गिरिराज को अर्पण करते हैं, पेड़े के रूप में मेरे पास आती है महाप्रसाद के रूप में, उसका स्वाद मैं क्या वर्णन करूं आपको, क्या बताऊं। रत्नागिरी का ऑर्गेनिक हापुस आम, उसका रस जब मैं पीता हूं, खाता हूं, तो उसका मैं क्या बताऊं, कैसा वर्णन करूं। वो तो एक ही तरीका है, आप भी मेरे साथ खाइए, वो पेड़ा भी खाइए, आमरस भी खाइए, और वो च्यवनप्राश भी कभी कम जाके खा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं साल भर रोज कैसा आनंद पाता हूँ। तो ये सब अनुभव की बातें हैं, प्रवचन की बातें तो ठीक है, लेकिन प्रवचन के बाद में अनुभव की ज़्यादा बातें हैं, तो आपको समझ में आएगा ये। कितना दिन तक वो मधु की बोतल बाहर से चाटेंगे, एक दिन ढक्कन खोल के उंगली डाल के चाटना पड़ेगा उसको, तो फिर समझ में आएगा कि अंदर क्या है उसके, कितना दिन से बता रहा हूँ उसके अंदर क्या है, वो समझ में आएगा क्या बोल रहा था मैं। तो ये है, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी की किताबें पढ़कर जो जीवन में परिवर्तन हुआ है, जो जीवन में आनंद का लाभ हुआ है, जो पढ़ते समय जो आनंद के हवा में रहते हैं, उसका क्या वर्णन करें आपको। अभी मैं दिन रात कथा करते रहता हूँ, आप जानते हैं ना, 3 दिन वृंदावन का मैंने 16 घंटा कथा की, फिर नंदगांव बरसाना और गोवर्धन परिक्रमा की भी 16 घंटे कथा की, अभी 10 घंटे कथा है, 2-3 जनवरी को कथा करने वाला हूँ। अभी आनंद नहीं आएगा तो मैं इतनी घंटा बोल सकता हूँ क्या, इतना मेहनत कर सकता हूँ क्या? अरे आनंद नहीं है तो 1 घंटा में बंद कर दूंगा बोलना, भाई ठीक है ड्यूटी है मेरी, मेरे को पगार मिलता है, मेरे को बोलने का ड्यूटी दिया है, पैसा भी करके ख़त्म करो, 1/2 घंटे में फिनिश कर दूँ, ये आनंद नहीं आने का लक्षण है। लेकिन आनंद आने का लक्षण क्या है, ये बोल ही रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बंद करने का, लोग सो रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं, मतलब क्या, बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। नहीं तो आदमी, मैं भी खुद भी 16 घंटा क्यों बोलूँ, गला दुखता है, थकता हूँ मैं, नींद आती बीच में मुझे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ ना 3-3 दिन, इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत आनंद है। और ये आनंद हमको प्रभुपाद जी ने सिंपल बना कर दिया है, वो संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े कठिन श्लोक, उसका सिंपल सा अनुवाद, फिर लंबा सा तात्पर्य दिया, उसको एक्सप्लेन किया हम जैसे लोगों को समझाने के लिए, और वो हमने प्राशन किया, वो पिया उसको अमृत को, तब जो अनुभव हुआ ना, वो आप, हमारी इच्छा है कि आपको भी मिले, वो अमृत का आस्वादन आपको भी मिले, ये हमारी बहुत हृदय से इच्छा है। और उम्मीद है कि आप सब लोग ये जो यहाँ पर लाभ मिल रहा है ना, उसको लाभ ले आप, ये भक्ति विधान में नौकरी के लिए आप आए हो इधर, लेकिन नौकरी तो एक बहाना है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि तो नौकरी आप यहाँ नहीं तो और कहीं करेंगे ना, मैं भी करूँगा कहीं ना कहीं तो करेंगे आप, क्योंकि धन तो कमाना ही पड़ेगा आपको घर चलाने के लिए, लेकिन भगवान ने आपको भक्ति वेदांत में ये जॉब दिया है, नौकरी दी है, पगार दिया है, लेकिन साथ साथ में प्रभुपाद जी का अमृत का पान करने का मौका दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ ये जॉब नहीं है, कृपा है आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी ये कृपा है। देखो ये जॉब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और जॉब के समय पर हम लोग बैठकर गीता का प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा पगार का मीटर चालू है उधर, पगार में रोक नहीं रखा है उधर, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं करना है आपको आज, ये उसी के अंदर आपको कथा सुनने को मिल रही है, आत्मकल्याण के लिए ऑन ड्यूटी आपको मिल रहा है। कोई दुनिया में संस्था है क्या ऐसी, अभी आप छोड़ के चले जाओ हिंदू जो ज्वाइन करो और बोलो प्रभु जी हमको भक्ति विधान की आदत है, हफ्ते में एक बार 1 घंटा कथा सुनने की हमको आदत है, तो क्या बोलेंगे, चलो गेट आउट फ्रॉम हियर, वापस वहीं जाके काम करो, इधर नहीं हो सकता है, प्रभु जी हमको आदत है, वो हमारे हॉस्पिटल से यात्रा भी निकालते, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, उधर ही जाओ यात्रा करके आओ, है ना, और आपका मिनट मिनट का हिसाब रखेंगे, यहाँ पर प्रार्थना भी होती है, शिक्षाष्ट्र गाते हैं, महामंत्र गाते हैं, सबको प्रवचन सुनाते हैं, उत्सव करते हैं, ये सब कृपा है हमारे ऊपर, और उस कृपा को हम लोग और गंभीरता से नहीं लेंगे तो और भी क्या कह सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं। कोहिनूर हीरा दिया, कोहिनूर हीरा के विषय में ज्ञान भी दिया, उसका मूल्य भी समझाया, फिर भी आप गेंद ही खेल रहे हैं उसके साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट वी कैन डू। घोड़े को उठा कर ले गया नदी के पास, उसको प्यास भी लग रही है, बताइए पानी बह रहा है, अच्छा पानी है, लेकिन वो नहीं पी रहा है, तो क्या कर सकता है आदमी, पीना तो उसी को है ना। इस तरह से आप सब लोग ना नदी के पास नहीं, आप सागर के पास बैठे हो, भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस के अमृत के सागर के पास बैठे हो आप लोग, खाली आपको जाकर पीना है बस, इतना पास में हो आप। एक साधु थे, वो मेरे परिवार के लोगों के लिए बोलते थे कि तुम्हारे परिवार के लोग हैं ना, वो उस सागर के पास खड़े हैं, लेकिन सागर की तरफ उनकी पीठ है और वो उल्टी तरफ देख रहे हैं, सागर के पास ही खड़े हैं, ऐसे ही बोलते हमारे परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि मेरे रूप में उनको वो सागर उपलब्ध है, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी नज़र उल्टी तरफ है, सागर उनके पीछे रखा है, उन्होंने पीठ दिखा कर रखा सागर को। वैसे कहीं हम लोगों की अवस्था ना हो, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी शुभकामना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
कोई
प्रश्न है कोई आपका?
प्रभु जी हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा बोलो।
प्रभु जी मैं निरंतर 12वीं महीने लगभग 4.5 लोग को भगवत गीता का श्लोक और तात्पर्य के साथ में रोज कल्पनुसार श्लोक भेजता हूँ।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। और बताओ, और बताओ।
और पढ़ता भी हूँ।
जो भगवत गीता का श्लोक का पठन करेगा रोज श्रद्धा से, उसे भगवान अपने धाम में लेके जाएंगे, ऐसा भगवान ने वादा किया है। शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं कि अगर भगवत गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक का 4 भाग आप करेंगे, 1/4, और वो 1/4 अगर आप जीवन में उतारेंगे अपने कार्यों में, तो आपको भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बताया? 700 में से एक श्लोक का 1/4। उसकी शिक्षा अगर जीवन में उतारी आप, तो भगवान स्वयं आपको अपने धाम में लेके जाएंगे। ये शंकर जी ने भगवत गीता का महात्म्य अपनी पत्नी पार्वती को बताया है, गीता महात्म्य और भागवत महात्म्य भी बताया है, दोनों बताया है। तो ये हमारा परम भाग्य है कि ऐसी भगवत गीता हमको प्राप्त हुई है। पूरे विश्व में लोगों ने उन पर PhD किया है, और हमने तो उसमें SSC भी नहीं किया है ना। कम से कम विदेशी लोगों को श्रद्धा तो नहीं, लेकिन उन्होंने PhD तो किया ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा उनको। और हम लोग भारतीय होकर, हमारी गीता है ये, हमारे देश की धरोहर है, देश का धन है ये, और हम लोग ने इसमें अभी एडमिशन भी नहीं लिया है। तो इसलिए सबको विनती है कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के माध्यम से ये मौका नहीं खोना आप, और आपके जो कलीग्स हैं साथ में काम करते हैं उनको प्रेरणा देना, हो सके तो उनको भेंट देना उनके बर्थडे के दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 150 रुपया हम लोग तो ऐसा उड़ाते हैं ना, हमारे सर्वेंट भी ऐसा 300-400 का वो टॉपअप कर देते हैं मोबाइल पे एक मिनट के अंदर, क्योंकि उसको यूट्यूब देखना है, उसको वो कुछ खबर सुननी है, न्यूज़ सुननी है उसकी, सुशांत शर्मा का क्या हुआ उसको अपडेट मालूम है उसका, रोज देखते रहती। तो वो सर्वेंट जो घर में है वो भी 300-400 रुपया झट से खर्च कर देते मोबाइल टॉप, उसके बिना रहा नहीं जाता। तुम बिना रहा न जाए, मोबाइल टॉपअप के बिना रहा न जाए। और उसको बोलेंगे 160 रुपये का गीता अभी 90 में मिल रहा है, ले लो। प्रभु जी 90 रुपया बहुत ज़्यादा होता है प्रभु, और कब पढ़ूँ उसको, ऐसा बोलेंगे। और दिन रात यूट्यूब में बिजी रहते हैं। तो समझो साल में एक बार अपने कलीग मित्र को अगर डिस्काउंट में लेकर 90 रुपये की गीता भेंट दी, अरे कभी कभी ना जेब में से भी पैसा गिर जाता है निकालते निकालते, एक नोट गिर जाती है 100 की, पता भी चलता नहीं हमको। तो ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं तो मैं बंद करता हूँ।
हरे कृष्णा सर।
हाँ बोला, दर्शन दिया, दर्शन दर्शन दिया आदि
सर, दर्शन चालू से
नहीं नहीं वीडियो ऑन करा,
वीडियो ऑन है सर।
कुटे ऑन है रे बाबा। हाँ बोला, आता जिससे बोला बोला ना,
मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये ते गुरुवारचे सगळे आपण हे करतो,
हां
त्यामध्ये जे एक लिहिलेलं दीपदान पण करतात आणि शंख पूजा पण करतात, शंख पूजा म्हणजे मी जस्ट वाचलेलं।
हां मग प्रश्न काय,
शंख पूजा काय असते सर?
शंख पूजा, शंख जे आहे ना त्याचं नाव आहे पांचजन्य, कृष्णाच्या शंखाचं नाव आहे पांचजन्य। कृष्णाने त्या राक्षसाला मारलं जो त्या शंखात राहत होता, त्याला मारलं आणि तो शंख घेतला आणि मग कृष्णाने तो वापरला आयुष्यभर युद्धामध्ये कुठे कुठे वापरला। तो तो अच्छा हिंदी में, ओके ओके। तो कृष्णाने एक राक्षस को मारा, उसका नाम था पांचजन्य, और वो शंख में रहा करता था। वो इतना विशाल शंख था कि उसके अंदर घर के रूप में वो रहता था, और वो सागर के अंदर था। तो जब भगवान अपने देवकी माता के 6 बालकों को वापस लाने के लिए गए तो समुद्र ने बताया कि एक राक्षस यहाँ रहता है, तो भगवान ने उसका वध किया और वो शंख लेकर वो आगे चले गए। तब से वो शंख उनके पास में है। भगवान का शंख का नाम है पांचजन्य शंख। तो भगवान का एक अस्त्र है ना, वो शंख, चक्र, पद्म, गदा, तो उसकी पूजा करना मतलब भगवान की पूजा करने जैसा ही है। चक्र भी उनका एक साथी है ना भगवान का, तो शंख भी साथी है, तो बड़ा महत्व है उसको। वो कृष्ण का शंख रूप में आपको पूजा करनी है उसकी। आप तो इतना शंख बजाते हैं हाथ पकड़ के, मैं तो उस विशाल राक्षस के रहने की जगह जो शंख है उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो कितना विशाल होगा, और वो उठाने वाले भगवान कितने विशाल होंगे बजाने के लिए। हाँ, जब भगवान ने शंख बजाया ना तो 14 भुवन 14 लोकों में उसकी आवाज़ गई थी, पता है आपको? थरकाप किया हृदय राक्षसों का उन्होंने, हृदय में इतना ध्वनि था उसके अंदर। तो ये दिव्य भगवान का सानिध्य है, भगवान का अस्त्र है वो। और कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली बार मिलेंगे दोबारा। हाँ, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर।